नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद यह निर्णय लिया गया है। पर्यवेक्षकों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराने धमकाने और मतदान नियमों का उल्लंघन जैसी गंभीर अनियमितताओं की सूचना दी है। कई केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बटन पर जानबूझकर काला टेप लगाया गया था। अनधिकृत लोगों का मतदान केंद्रों में प्रवेश और दूसरों का वोट डालने की घटनाएं भी सामने आई हैं। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां कर ली हैं। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती कल कड़ी सुरक्षा के बीच 77 मतगणना केंद्रों पर होगी। तमिलनाडु में 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना के लिए 10,545 कर्मी तैनात किए जाएंगे। 4,624 सहायक पर्यवेक्षक भी तैनात रहेंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक एक पर्यवेक्षक सहित कुल 234 मतगणना पर्यवेक्षक पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे और आयोग के वर्तमान निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।
जनादेश 2026।
असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ।
मतगणना की पल पल की खबर, संवाददाताओं से ताजा हाल और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का सटीक विश्लेषण।
कल सुबह 8:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
जनादेश 2026।
संसदीय कार्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया है कि विपक्षी दल सरकारी एजेंसियों, निर्वाचन आयोग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और मीडिया पर लगातार हमले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष अब न्यायपालिका को भी निशाना बना रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि इन दलों को ये एहसास नहीं है कि वे देश के लोकतंत्र की नींव पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की जनता इन दलों को ऐसा सबक सिखाएगी जो वे कभी नहीं भूल सकेंगे। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। आग लगने की घटना की जानकारी मिलने के बाद आग बुझाने के लिए 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सुबह 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया।
इमीडिएटली हमारी गाड़ियां यहां पे पहुंची और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और फायर फाइटिंग ऑपरेशन साइमल्टेनियसली हमने स्टार्ट करा। फ्रंट साइड से हमने अपने स्पेशलाइज व्हीकल, लैडर्स, फायर इक्विपमेंट्स, कटर्स वगैरह डिप्लॉय करके आगे से टोटल जो है 15 व्यक्तियों को यहां से रेस्क्यू करा। टोटल 9 इसमें चार्ड बॉडीज रिकवर करी जो कि दिल्ली पुलिस को हैंड ओवर कर दी गई।
उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आग लगने की दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार इस मुश्किल घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ है। उन्होंने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है। स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जा रही है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू होगी और शाम 5 बजे तक चलेगी। परीक्षा केंद्र में अंतिम प्रवेश दोपहर 1:30 बजे तक होगा। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मूल के विद्यार्थी भी आज स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। दुबई और शारजाह में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा की निगरानी दुबई में भारत का महावाणिज्य दूतावास कर रहा है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच ओपेक प्लस समूह के 7 देश जून में तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, अल्जीरिया, कजाकिस्तान, रूस और ओमान अगले महीने प्रतिदिन लगभग 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाएंगे। भू राजनीतिक संकट और संयुक्त अरब अमीरात के समूह से अलग होने के बाद ये लगातार 3रा महीना होगा जब ओपेक प्लस देश तेल का अधिक उत्पादन करेंगे। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। ये प्रेस की स्वतंत्रता के प्रयासों को प्रोत्साहित करने और विकसित करने तथा विश्व स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन करने का अवसर है। इस वर्ष का विषय है शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।